नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु में इस बार 5 तरफा मुकाबला होगा। राज्य में 1,18,00,000 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले चुनाव में राज्य में 70-75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के माध्यम से मतदाताओं से अपना मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उधर पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 6 अप्रैल तक अपने नामांकन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। इस चरण में 23 अप्रैल को 152 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। इस चरण के लिए अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। चेन्नई से जॉय और कोलकाता से संदीपान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत असम और पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में असम की प्रगति सबके सामने है और राज्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के कारण लोग डबल इंजन वाली एनडीए सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार ने पिछले 5 वर्ष में पुदुचेरी के लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं। लोकसभा में आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों के बीच प्रक्रियात्मक विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में समूह ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों को विनियमित करना है। सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल के वितरण की अनुमति दे दी है। विश्व भर में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य सामान्य स्थिति में केरोसिन का उपयोग बंद होने वाले क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना है। 2 और भारतीय एलपीजी टैंकर 94,000 टन एलपीजी के साथ स्वदेश आ रहे हैं। दोनों टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। एक एलपीजी टैंकर BWTYR कल मुंबई पहुंच सकता है, वहीं दूसरे टैंकर BWELM के 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। छत्तीसगढ़ में चल रहे पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल के 6ठे दिन रायपुर में तीरंदाजी, हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि कुश्ती प्रतियोगिताएं सरगुजा में जारी रहेंगी। एथलेटिक्स स्पर्धाएं आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में शुरू होंगी। कर्नाटक 15 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। ओडिशा 9 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 5 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से शुरू हुआ है और 3 अप्रैल तक जारी रहेंगे। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से मंगोलिया के उलान बटोर में शुरू हो रही है। भारत की निखत जरीन, लवलीना बोरगोहाई, जैस्मीन लेम्बूरिया, अंकुशिता बोरो, अरुंधति चौधरी और अल्फिया पताहन को बाई मिलने के कारण अगले राउंड में प्रवेश मिल गया है। इसके अलावा प्रीति पवार और मीनाक्षी हुड्डा भी भारतीय दल का हिस्सा हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में ओलावृष्टि का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।